तो मेरे प्रिय श्रोता हो, ये घर में तोता कहने लगा है कि हे मैना, मैं ऐसा फल बनना जानता हूँ जो मेरे फल को कोई खाएगा वो राजा अवश्य होगा, लेकिन कुछ कष्ट पाकर के कुछ दिनों के बाद होगा। तो मैना कहने लगी है कि तो फल बन के टपको, आज मैं दोनों फल बन के गिरती हूँ। तो बंधु, रूप सो गया था और बसंत जाग रहा था। तोता मैना की बात सुन करके बसंत कहने लगा, क्यों ना सुबह होने वाला जो फल है उसको मैं अपने भैया को खिला दूं, और जो कष्ट पा करके राजा होगा उसे मैं स्वयं खा लूं, क्योंकि इसके सहारे मेरी जिंदगी कट जाएगी। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, रूप को जगाया, भैया भैया क्या बात है भैया, लो ये फल खाओ। तो आज रूप सुबह होने वाला जो फल था बंधु राजा, वह फल खा लेता है। रूप कहने लगा है, भैया बसंत तुम यहाँ बैठो, एक फल से भूख नहीं मिटेगी, मैं तुम्हारे लिए और फल लेकर आता हूँ। तो इधर में बंधु रूप फल लेने के लिए चला जाता है और बसंत सो जाता है। इधर में क्या होता है कि उस जड़ में से एक काला जहरीला सर्प निकलता है। होता हो, जहर बदन में छा जाता है और इधर में मूर्छित होने लगा है। अब बचने का मैं नहीं, भैया जहर गयो तन छाई, भैया मेरे से कौन अब सुहाल कहे जाए। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से बसंत या खत्म हो जाता है। रूप फल लेकर के आता है तो अपने भैया बसंत को आकर के देखा है तो जगाने लगा, भैया बसंत तुम बोलते क्यों नहीं हो भैया, हैं इसके मुख से नीले नीले झाग निकल रहे हैं, शायद होता है इसे भी सर्प ने डस लिया। भैया बसंत, भैया जय भगवान, घर से हम चले थे तीन और जंगल में आके रहे दो, और दो में से भी आज में अकेला रह गया भैया। नेक बोलो सुना दे भैया, मेरी माँ की धीर बनाए दे, मेरी पड़ी भमरू में नैया। भैया बसंत तुम कहाँ हो भैया, आके खोलो। राठौर कैसेट के माध्यम से आप ये तीसरा भाग सुन रहे हैं रूप बसंत का। और हमारे साथ खटतार बजा रहे हैं छोटे से नन्हे मुन्ने, नाम बताए उनको। हाँ तो देखिए श्रीमान, आपके जाने पहचाने अभिलाष सिंह जी, उनके छोटे सपुत्र हैं जो कि खटतार बजा रहे हैं, उनका नाम है केशव सिंह राठौर। और देखो कितनी सुंदर खटतार बजा रहे हैं और हम सबका मन मोह रहे हैं। हाँ हाँ ध्यान दीजिए आगे क्या होता है। अरे मुख से बोल सुना उभरात कह पिसियर ने सिखायो है, जंगल के बीच कोई भी नजर नहीं पड़ा है। रूप कुमार कहने लगा सामने नगर मुझे दिखाई देता है, चलूं अपने भैया के कफन के लिए भीख मांग के लेके आऊंगा, जब अपने भैया की लाश को ठिकाने लगाऊंगा। मेरे प्रिय श्रोताओं सामने मिश्रा नगर था और वहां के राजा खत्म हो जाते हैं और अपने जनानिया प्रधान से कह दिया था कि सुबह कोई 6 बजे फाटक पे मिल जाए उन्हें यहाँ का राजा बना देना। तो मेरे प्रिय श्रोताओं जब रूप कुमार रात्रि के समय में वहां पहुंचा है तो फाटक से जाकर के सो जाता है और सुबह होता है तो जनानिया प्रधान चलता है। क्या भाषा थी उसकी बंधु, आधा जनाना आधा मर्दाना। मैं गाती और बजाती था और राजा ढूंढने जाती था, कर लाती था मैं गाती और बजाती था, मैं राजा ढूंढ कर लाती था। आज मेरे प्रिय श्रोता हो जैसे ही फाटक में गए और रूप कुमार सो रहे थे उनको जगाया, अरे भैया तुम कौन होती था? बोले भैया ये जनानी भाषा कैसे तुम्हारी, आदि मर्दानी आदि जनानी। बोले तुमको पता नहीं होती था हम यहाँ के जनानिया प्रधान होती था, तो भैया हमसे क्या चाहते हो? चाहते क्या है, अब तो तुम मिश्रा नगर के राजा होती था क्योंकि हमारे राजा मरती था। और ये कह गए थे कि जो कोई फाटक पे मिलती था 6 बजे उसको यहाँ का राजा बनाती था। तो बंधु आज जाकर के रूप कुमार को गद्दी पे बिठा दिया और तिलक कर दिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर में मेरे प्रिय श्रोता हो रूप कुमार राजा बन चुके हैं और इधर में बसंत जो जंगल में पड़े वहां एक महात्मा आकर के उन्हें जिंदा कर देते हैं और वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर में बसंत जब आगे बढ़ता है तो बंधुओं क्या देखता है, और इधर राजा की कचहरी लगती है तो प्रजा की दुहाई आती है, बोले महाराज महाराज की दुहाई है। रूप कुमार कहने लगे कौन सी आफत आई है भैया? कि महाराज इस जंगल में शेर रहता है, नित प्रत्येक बालक की भेंट ले लेता है, वो खाता था। आज बंधु जो इतने शब्द सुने हैं, रूप कुमार कहने लगे जनानिया प्रधान कह दो जाकर के जो कोई शेर को मारेगा वो 500 रुपया हमसे इनाम पाएगा। तो बंधु इस प्रकार से 500 रुपये के लोभ में जनानिया प्रधान स्वयं चल देता है उस शेर को मारने। लेकिन इधर होता क्या है कि वह शेर बसंत के ऊपर झपटता है। तो बसंत राजा का राजकुमार था, कटारी बगल में थी और उस कटार द्वारा उस शेर को मार देता है और शेर के ऊपर आराम करता है। इधर में जनानिया प्रधान चलता है। मैं गाती और बजाती था, मैं शेर मारने जाती था, मेरे प्रिय श्रोता देखिए इधर में शेर को मारने के लिए जनानिया प्रधान चला है। उधर जो बसंत ने नाक कान काट के अपनी जेब में पहले रख ले, जबकि राजा ने ये कह दिया था कि जो कोई नाक कान निशानी पाई जाएगी उसे 500 रुपया दिए जाएंगे, आज वो आराम कर रहा है शेर पे। बंधुओं क्या होता है, मैं शेर मारने जाती था और 500 रुपया पाती था, मैं गाती और बजाती था, मैं राज प्रधान देखता है उस शेर के ऊपर एक बालक सो रहा है। है ये तो शेर मरती था और इस बालक ने मारती था, अब इसको ऐसा करूं कि 500 रुपया हमें वैसे तो मिलेंगे नहीं, इसको मुझे मारना चाहिए। तो मेरे प्रिय श्रोता हो, उस बसंत कुमार को सोते को जनानिया प्रधान चाकू से गोद करके और नदी में डाल देता है और वहां से वो लौट देता है। बंधु इधर में देखिए क्या होता, उसकी लाश बह करके नदी में जाती है। और इधर में धोबी कपड़ा धो मत, और धोबी कपड़ा धो रहा है, धोबिन को घरे छोड़ आओ, क्यों को बाद रोटी नहीं कही आवत, वो सब रात 4 बजे चलो आवत। तो जब कपड़ा धो मत जब खूब सूरज चढ़ आयो और इतने बाको पेट तिल मिलायो भूख की मारे, तो कहा कह रहो भैया, अरे कबल हो गए, सुन रहे हो प्रेमचंद, अरे कबल हो गए खबारी रघुराई धोबिनिया रोटी ना लाई, ए सियोरा ए सियोरा ए सियोरा कबल हो गए। मेरे प्रिय श्रोताओ, हम आपको प्योर धोबियाई चीज सुना रहे हैं, धोबियाई चीज प्योर सुना रहे, प्योर 5 रुपया की लई है गधैया, 5 रुपया की लई है गधैया, वो तो खेचर के तो ब्याही धोबनिया रोटी ना लाई, ओ सियोर मेरी सासू की अब ना आई न जाने कहां जा, तो पेट में आज मुंह से लो रहा है, जाने कहां निकल गई होगी, मोया सो मालूम पड़ते हैं, कहूं प्रेमचंद के यहां तो ना चली जा तुम्हारा कुरावली, क्योंकि वो 2 दिन से आ रहे नहीं और वो भी गायब। बंधु आज इस प्रकार से सोच करके बाहर निकल के नदी से और सो जाता है रेती में। इतने धोबिन रोटी बना के लेके चली, हयात तो कड़ी खाऊ मारे, बहुत देर रह गई, कहा कह रही हो, कैसे लाऊं मुश्किल अटकी लंबे हार की, मैं रोटी कैसे लाऊं मुश्किल, और सुनो उतते, अरे परे ते धरूं गठरिया न्यारकी में रोटी। लंबे हार की। और सुनो भैया ललन, सुन रहे हो? अबे सारो समझियो कह के रही है वो। हमें मालूम है ये प्रेमचंद की शिकायत पट्टी है। लंबी करो मशीन पुरानी, और सदरी बात तूफानी नहीं जानी। और कैसे भैया? अरे के हम पे कुटी कोटत ना रखी है, अटकी लंबे हार की। आज बंदो रोटी लेकर के पहुंच गई भैया, इतने वो सोरो गहरी नींद में खर्राटे लेके, और जाके कहा कह रही है वो, अरे वो घनसुआ के दादा हो, अरे वो घनसुआ के दादा हो, जे लाश नहीं कर रही करके सब एकदम ठाड़ा है गो। और ये धोबी ने तू आ गई? हाँ मैं आ गई। ला ला मोदे रोटी ले आई, ले तो आई सबर पकड़ो ने तुम आई कह लाई। ला ला बोलते अब जो समझ ले पेट में नहीं मुंह से सो लो रही ले, तो पहले कुल्ला तो कर लो सुबंधो, आज लोटा दे दो पानी को। और जो ही मुंह में डालो एकदम से बल बला के इतना मेरा जी बता, रोज तू मीठो पानी लावती आज नुनु खरो कैसे लाइए? पिया तुम आज तुम मारोगे बताए तुम ना, तो इस समय प्रेमचंद के समय बिल्कुल नहीं मारे हम, बता दे पर सही सही क्या करूं मैं। घर से चली सो मैं ठे पर लग गई और मैं गिर पड़ी लोटा फैल गो। अब लाग भैया हमें तुम्हें से कह रहे सुन ले, लोटा फैल गया तो हमने क्या करो? अब तो देखो पानी कहू नजर न हमने जामे, कह दे मारोगे तो नहीं नहीं मारोगे तो हमने जामे पिशाब कर लो। आज से जा रही है मारू तेरी, तू है मारा रहे तू। आज बंदू देखिए धोबी कहने लगा चल घर, कोई बात ना घर घर की बात है, बहु माता के गऊ माता एक बराबर होती कोई बात ना। तो रोटी खाई भैया और कहा कहने लगी है, आ बाला मैं तो ये रोटी जो खबाऊ लग रही। आ जाला मिला ले, कहा मिला ले येरी सुर मिला ले सुर की कह रही। बोले लगकर तुम्हें कह रही है कि मुझे तो गबा गबास लगे एक काम कर, नहीं हुआ तो तू बाजना गाने सुना दे कबकिए। जब तू मैं तो विदा करा के लाओ ना, तो तू गधा बैठी अब गीत गाली में बड़ा रे करो तुम, तब तो मैं रोए रही। अरे कोई बात ना, तू भाई सुना दे। नहीं नहीं तो देखिए आज वो धोबिन कहाँ गाय रही है। अरे नाए सुख देखो सुनयो, ए के नाए सुख देखो पिया रवा में बस के नाए सुख दी। अरे नाए सुख देखो पिया रवा में बस के नाए सुख दी। बालक कोई तोई पे भाव न बोई पे भाव, देख तेरी दाढ़ी मारू तेरी है, तुझे मरे मरा का करेगी। बोले ना है तुम्हें ले आओ ना, तुम्हें मैं इसकी समझ। क्या हुआ भैया बेटा में बिया चलो घर उलिवाई आज बंदे इस प्रकार से बसंत की लाश को निकाल लिया है और उसमें सांस चल रही थी तो मलम पट्टी दोनों ने बड़े आदर के साथ करी उसको और जिंदा कर लिया है। मेरे प्रिय श्रोता हूं इधर में देखिए कि उधर बसंत का नाम जब पूछा गया है तो अभी बोला तेरा नाम क्या है तो बाने की मुझे कहते बसंत कुमार। बोले बेटा यह तो राजन के सुकुमार के नाम है इसलिए अब तू अब मां या धोबी को लला कहो जागो ताते हम त्यो नाम रख रहे बसंत हुआ। हाँ तो ठीक है दादा कोई बात ना। बोले तू कितने रहेगा मैं माऊ कि अम्मा की माऊ। बसंत बोला हूं तो अम्मा की माँ रहूंगू समझ गो अम्मा की माऊ तो रहेगा ही कड़ी खाए दादा की माँ बिल्कुल ना रहेगा। देख तेरा काम है कपड़ा लाना और धोबे को काम हुआ हो घर घर से कपड़ा लिया। बोले ठीक। मेरे प्रिय श्रोता हो देख इधर क्या होता है कि सेठ इधर में पर रोजगार के लिए चलता है तो रोजगार के लिए चलता है तो मिश्रा नगर के समीप आकर के उसका जहाज बंद हो जाता है अचानक। और जब भी आता था उसका जहाज अचानक बंद होता था और राजा से एक बलि लेता था वो सेठ। इधर बंधुओं वह सेठ रूप कुमार की कचहरी में पहुंचा है जाकर के कहा महाराज की दुहाई है। बोले क्या बात है कि महाराज मेरा जहाज है वो नदी में अटक गया है और एक बलि हर साल लेता है जब मेरा जहाज आगे बढ़ता है। रूप कुमार कहने लगे तो इस साल तो ठीक है तुम आयो मिल जाएगी लेकिन आइंदा यहां मत आना। जनानिया प्रधान को बुलाया कहा के देख भाई सुबह किसी को सूली का हुक्म हो उसे सेठ को दे देना जिससे कि इसका जहाज उछल जाएगा। तो मेरे प्रिय श्रोता हो इधर में जनानिया प्रधान को मालूम पड़ जाता है कि जो वो लड़का मैंने मार के नदी में डारो और धोबी धोबिन के यहाँ है तो क्यों ना मैं वह लड़का है और जब सेठ ये फायदा न रहेगा बांसु न बजेगी बांसुरी और जब पोल खुलेगा ही ना तो फांसी जनानिया प्रधान तो ही होनी है। इस लोभ में बंधु आकर के आज धोबी के यहाँ पहुंचता है सवेरे। ए धोबी अपने लड़का को भेज दे हमारे जो सेठ आए विदेशी सेठ ये उनके कपड़ा अपड़ा धोबने हैं। बोले ले जा हमारे लला ए बसंत तू आ जा प्रधान जी के साथ चला जा। बंधु आज वह पहुंचे हैं लेकर के तो सेठ के हवाले कर दिया उस बालक को। जनानिया प्रधान वहां से वापस हुआ आता है। जब सेठ बलि चढ़ाने को कहता है तो बसंत कुमार कहने लगा भैया ए भाई सेठ मुझे यह बलि चढ़ाने के लिए लाया गया मैं तो यह कपड़ा लेने आया था कपड़ा दे दो। अरे कपड़ा तो अब हम तेज धोएंगे तेरी हम बलि चढ़ाएंगे। सेठ जी तुम्हारा जो जहाज बिगड़ बलिया चल जाए तो क्या या तो कौन सी बढ़िया बात। बंधु राजा का कुमार उसने आज अपनी उंगली चीर के और जहाज की मशीन पे डाली एकदम से जहाज चालू हो जाता है। सेठ बड़ा प्रसन्न होता है। बोले लाला तुम्हें सही बता गो। हाँ हाँ बोलो कि तू धोबी को सो तो पुत्र है ना है तू राजा को सो राजकुमार लग रहो। बोले मैं यहाँ दादा और अम्मा के यहाँ रहता हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब है। बोले देख तू हमारे यहाँ रह गो तो सेठ कहलागो इसलिए तू हमारे संग चले। बंधु आज वो सेठ उस फुसला करके बालक को अपने साथ ले जाता है। इधर में सेठ जब ले जाता है तो सेठ गया रहने लगा है तो बंधु बसंत कुमार बड़ा समझदार और होशियार और सुंदर था उसका विवाह हो जाता है और उसकी घरवाली का नाम था चंद्रप्रभा। विवाह हो जाता है तो जब उसकी पत्नी कहती है कि पिया हमारा तुम्हारा बिछोड़ो है जाए तो कैसे मिलेंगे तो बसंत कुमार कह देता है कि हे प्रिय जो कोई तुम्हें रूप बसंत का किस्सा सुना दे उसी को तुम अपना पति मान ले। बोले बंधु इस प्रकार से आज